डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के भजन व्याख्यान 22 2024 ब्रूस वाल्ट के और टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के और भजन की पुस्तक पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र संख्या 22 द लिटर्जिकल अप्रोच कोरोनेशन स्तोत्र स्तोत्र 110 है। भगवान, हम सीख रहे हैं कि हम आपकी उपस्थिति में जबरन प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन हमें आपकी वाचा की संरचनाओं के भीतर इस तरह से आना होगा जो आपको प्रसन्न करे। आपका धन्यवाद कि आप न केवल हमें यह निर्देश देते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए, बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति से आप हमें सशक्त बनाते हैं। जैसा आपने हमें निर्देश दिया वैसा ही जीना। हम खुद पर निर्भर नहीं हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे हमारे भगवान ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है। हमें प्रलोभन की ओर न ले जाएं, क्योंकि हमें अपनी कमजोरी का एहसास है और हम आपकी कृपा के बिना इसे संभाल नहीं सकते हैं। हमें आपकी जरूरत है। हम अपने आप में मजबूत नहीं हैं। तो आपकी सक्षमता के लिए धन्यवाद। आपकी सफाई के लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आप हमें लहू पानी वचन और आत्मा दोनों से पवित्र लोग बनाते हैं। मसीह के नाम पर आमीन। ठीक है, हम स्तोत्र के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण को देख रहे हैं, जिसमें हमने विचार किया है कि धर्म की बाहरी अभिव्यक्तियों को देखते हुए हम मुख्य रूप से पूजा पद्धति के बजाय कल्टस शब्द का उपयोग करते हैं। हमने विचार किया है कि पंथ कैसे कार्य करता है और पंथ के विभिन्न पहलू क्या हैं। हमने देखा है कि कैसे भजनों की रचना उस पंथ के परिवाद के रूप में की जाती है जिसे मूसा ने हमें पवित्र कार्मिक दिए और हमें पवित्र संस्थान और पवित्र मौसम दिए, एक पवित्र स्थान ग्रहण किया। डेविड ने उन सभी को ओपेरा में बदल दिया था। तो भजन उस अनुष्ठान के साथ जुड़ा हुआ संदेश था जो मूसा ने लोगों को दिया था। भजन भी संगीत पर आधारित थे। मंदिर तंबू से भी अधिक भव्य था। तो वास्तव में मैं कहता हूं कि डेविड एक मोजार्ट की तरह था और उसने भगवान की स्तुति के लिए और वास्तव में भगवान की प्रेरणा के तहत एक भव्य और शानदार तरीके से अनुष्ठान को ओपेरा में बदल दिया और फिर एक पैटर्न बन गया है। हमने धार्मिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए एक या दो भजन लिए हैं। मैंने राज्याभिषेक स्तोत्र और राज्याभिषेक पूजा को चुना है, जिसमें राजा को सियोन पर्वत पर भगवान के राजा के रूप में स्थापित किया गया है। और पिछले घंटे हमने भजन दो को देखा, जहां वह अपने राजा को सियोन पर्वत पर स्थापित करता है, जो स्वर्ग का प्रतीक था। भजन 110 में हमें आगे बताया गया है कि हमारे पास राजा को भगवान के दाहिने हाथ पर बैठाया गया है। तो आपके नोट्स में मेरे पास पृष्ठ संख्या नहीं है, लेकिन पृष्ठ 284 पर हम भजन 110 लेते हैं, जो एक और राज्याभिषेक भजन है। मैं यह इंगित करके आरंभ करता हूं कि यह नए नियम में कैसे कार्य करता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है, शायद नए नियम में सबसे महत्वपूर्ण स्तोत्र। भजन 110 से एक श्लोक के तीन पूर्ण उद्धरण हैं, जो कि नए नियम में संपूर्ण भजन है। और इसलिए उदाहरण के लिए पहला तब होता है जब फरीसियों और सदुकियों द्वारा यीशु का परीक्षण किया जाता है, और फिर वह भजन 110 द्वारा उनका परीक्षण करता है। मुझे लगता है कि आपको मैथ्यू 22 का संदर्भ याद है कि जो फरीसी रोम को नापसंद करते थे, वे अपने साथ हेरोदेसियों को लाए थे जिन्होंने यीशु को फंसाने के लिए रोम में समर्पण कर दिया था। और उन्होंने उससे प्रश्न पूछा, क्या कैसर को राजकीय कर देना उचित है? और यह एक जाल है, क्योंकि जो भी यीशु इसका उत्तर देता है वह दुविधा के कगार पर है। यदि वह कहता है हाँ, यदि उसने कहा नहीं, सीजर को कर देना सही नहीं है, तो फरीसियों ने हेरोदियों को साथ लाया क्योंकि तब वे यीशु को रोम में रिपोर्ट करेंगे और वे यीशु पर राजद्रोह का आरोप लगाएंगे क्योंकि उन्होंने कर देने से इनकार कर दिया था सीजर, जिसके बाद रोमनों ने उसे अस्वीकार कर दिया। दूसरी ओर यदि उसने कहा हाँ तुम्हें सीजर को कर देना चाहिए, तो फरीसी लोगों के सामने उस पर आरोप लगाएंगे कि वह राष्ट्र के प्रति विश्वासघाती है, कि वह स्वयं को रोम के अधीन कर रहा है, जिससे वे जुआ उतार फेंकना चाहते थे, और इसलिए लोग उन्हें अस्वीकार कर देंगे। इसलिए यीशु जो कुछ भी करता है वह गलत है। और यीशु ने कहा मेरे लिए सिक्का लाओ, और उसने कहा जो सीजर का है वह सीजर को दो अर्थात सिक्का, और जो परमेश्वर का है अर्थात तेरा हृदय या तेरा व्यक्तित्व जो परमेश्वर के स्वरूप में है वह परमेश्वर को दो। फिर सदूकियों ने उसकी परीक्षा ली और उन्होंने उससे पुनरुत्थान के बारे में पूछताछ की। वे पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते। तो उनके पास यह कहानी एक ऐसी महिला के बारे में है जिसके साथ पुरुष भाई थे और वे सभी क्रमिक रूप से मर जाते हैं, और एक स्त्री का विवाह क्रमानुसार इन सात पुरुषों से, इन सात भाइयों से किया जाता है। और पुनरुत्थान में सवाल यह है कि वह किसकी पत्नी है, और यीशु कहते हैं कि पुनरुत्थान में हम स्वर्गदूतों की तरह होंगे, हम न तो शादी करते हैं और न ही शादी में देते हैं। और फिर वह पलटकर कहता है सदूकियों ने केवल पेंटाटेच को स्वीकार किया, शेष पुराने नियम को नहीं। उनका तर्क पुराने नियम से आना चाहिए। वह बहुत चतुराई से कहता है परमेश्वर ने कहा मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, और यीशु कहते हैं कि वह मृतकों का परमेश्वर नहीं है, वह जीवितों का परमेश्वर है, और इसलिए वह तर्क दे सकता है कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब अभी भी जीवित थे। तभी वकील यीशु की परीक्षा लेने आता है। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? और यीशु हमें दो आज्ञाएं देते हैं, ईश्वर से पूरे हृदय से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। लेकिन फिर यीशु ने उन पर बाजी पलट दी और उसने उनसे प्रश्न किया कि मसीहा किसका पुत्र है, और वे एक मानवीय मसीहा देने को तैयार थे लेकिन एक दिव्य मसीहा, एक ईश्वर पुरुष नहीं। तो फिर उन्होंने कहा ये किसका बेटा है, और उन्होंने कहा दाऊद की संतान। लेकिन तभी यीशु उन्हें धक्का देते हैं। तो फिर सबसे महान राजा दाऊद ने अपने प्रभु से कैसे कहा? दाऊद ने अपने प्रभु से क्या कहा? वह कहता है यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, और दाऊद बोल रहा है। दाऊद इसराइल का सबसे महान व्यक्ति है, और फिर भी दाऊद से भी बड़ा एक है। और यीशु यह तर्क दे रहे हैं कि दाऊद से बड़ा कोई केवल दाऊद का पुत्र नहीं है, वह भगवान का पुत्र है। और वह कहानी ईसाई धर्म के लिए बहुत बुनियादी है। ईसा मसीह की ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचान कि वह एक मनुष्य से भी बढ़कर है, वह भगवान का अवतार है। और इसलिए वह कहानी मैथ्यू, मार्क और ल्यूक दोनों में दोहराई गई है। इसे पहले ही उपदेश में भजन 2 के साथ फिर से उद्धृत किया गया है, और आपके पास पीटर के महान उपदेश में है कि वह पेंटेकोस्ट की घटना को समझाने के लिए आगे बढ़ा। वह कहता है कि वह स्वर्ग पर चढ़ गया और ऊंचे स्थान पर महामहिम के दाहिने हाथ पर बैठ गया, और उस स्थिति से उसने अपने चर्च पर अपनी आत्मा उंडेली, जिससे चर्च को सार्वभौमिक रूप से विस्तार करने में सक्षम बनाया गया। तो फिर पहले ही उपदेश में एक पूरा पाठ उद्धृत किया गया है। और फिर निस्संदेह इब्रानियों का अधिकार कहता है कि पाप के लिए शुद्धिकरण करने के बाद वह ऊंचे पर महिमा के दाहिने हाथ पर बैठ गया। ऊंचे पद पर महामहिम के दाहिने हाथ पर बैठकर वह अपनी विरासत के कारण स्वर्गदूतों से भी अधिक उत्कृष्ट नाम रखता है। और फिर उसने स्वर्गदूतों में से किससे कभी कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है। तो इब्रानियों का अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में इन दो भजनों को एक साथ रखता है। और निःसंदेह इब्रानियों ने वास्तव में भजन 110 और श्लोक 4 के पूरे विचार को विकसित किया है, जहां भगवान उससे कहते हैं, आप मलिकिसिदक की तरह, आदेश की तरह एक पुजारी हैं। और इसलिए आपके पास यह दिखाने के लिए इब्रानियों अध्याय 7 का पूरा तर्क है कि यीशु मलिकिसिदक की तरह कैसे हैं। तो यह भजन यह कथन है कि यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठता है और वह मलिकिसिदक की तरह है। वह धर्मशास्त्र भजन 110 में अंकित है और नए नियम में प्रसारित किया गया है। वास्तव में यह स्तोत्र 3 से 5 बार उद्धृत संपूर्ण छंद है। और फिर नए नियम में इस भजन में किसी भी अन्य भजन से अधिक 25 संकेत हैं। इसलिए यह नए नियम के ईसाई धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी पाया गया है और मैं मार्क 14 की ओर भी ध्यान आकर्षित करता हूं जब उस पर महायाजक के समक्ष मुकदमा चल रहा है। और पृष्ठ 284 के नीचे मैं मार्क 14:61-64 का हवाला देता हूं। महायाजक ने यीशु से पूछा, क्या आप मसीहा हैं, धन्य के पुत्र? जिस पर यीशु ने उत्तर दिया, मैं हूं। और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठा हुआ और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। इस स्वीकारोक्ति पर मैं जोड़ता हूं, महायाजक ने उत्तर दिया, आपने यह निंदा सुनी है कि वह खुद को भगवान का पुत्र कहता है, खुद को भगवान के बराबर बनाता है। और इसलिए इस भजन की स्वीकारोक्ति सीधे क्रूस पर चढ़ने की ओर ले जाती है। पृष्ठ 285 पर मैं पॉल और लेखक इब्रानियों के साथ साथ पत्रस दोनों की पत्रियों के अंश उद्धृत करता हूं। हमने पहले ही भजन के महत्व और 3 भजनों में से एक का उल्लेख किया है, जिसमें लेखक इब्रानियों ने अपने तर्क को आधार बनाया है और मसीह के बारे में उनका ईसाई धर्म इस भजन पर आधारित है। पॉल में हमने इसे चर्च की शुरुआती स्वीकारोक्ति के हिस्से के रूप में पढ़ा कि रोमियो 8 संभवतः एक प्रारंभिक भजन था जो ईश्वर के दाहिने हाथ पर मसीह की लगातार मौजूद मध्यस्थता का जश्न मना रहा था। और पॉल का कहना है कि वह हमारे लिए भगवान के दाहिने हाथ पर मध्यस्थता कर रहा है। पहला कुलुस्सियों 3:1 संभवतः एक बपतिस्मा सूत्र है जो मसीह की मृत्यु में भाग लेने वालों की स्वर्गीय पहचान को दर्शाता है। पौलुस कहता है, जब से तुम मसीह के साथ पलेभे हो, अपना मन ऊपर की वस्तुओं पर लगाओ, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है। और फिर इफिसियों में उसकी पूजा की जाती है, पुनर्जीवित मसीह के सार्वभौमिक साम्राज्य की प्रशंसा करते हुए, जो भगवान के दाहिने हाथ पर बैठता है, जब उसने मसीह को मृतकों में से उठाया और उसे सभी शासन और अधिकार से कहीं ऊपर स्वर्गीय स्थानों में दाहिने हाथ पर बैठाया। तो आप इस पूरे धर्मशास्त्र को देख सकते हैं कि भगवान की यीशु स्वर्ग पर चढ़ गए और भगवान के दाहिने हाथ पर बैठे नए नियम के ईसाई धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। 1 पीटर 3:22 में फिर से शायद पुनर्जीवित ईसा मसीह पर भरोसा करने वालों के लिए एक बपतिस्मा संबंधी संदर्भ, जैसा कि वह उनके और बपतिस्मा लेने वालों के बारे में कहते हैं जो स्वर्ग में चले गए हैं और स्वर्गदूतों अधिकारियों शक्तियों के साथ ईश्वर के दाहिने हाथ पर हैं। उसे चर्च में इस भजनहार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सभी इसे एपोस्टोलिक पंथ और निकेन पंथ दोनों से जानते हैं। एपोस्टोलिक पंथ 7वीं स्वीकारोक्ति की वह स्वर्ग में चढ़ गया और भगवान के दाहिने हाथ पर बैठा है। और हम में से अधिकांश लोग प्रत्येक रविवार को एक स्वीकारोक्ति का पाठ करते हैं। हम में से कई लोग ऐसा करते हैं। और ये सभी भजन 110 में इस सिक्के के ढाले जाने की याद दिलाते हैं। चर्च के इतिहास में अक्सर इसका उपयोग स्वर्गारोहण रविवार आदि के लिए किया जाता है। तो मैं यहाँ जो बात कह रहा हूँ वह चर्च के इतिहास में सुसमाचारों में, पत्रियों में और चर्च के पूरे इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भजन रहा है। अब हम भजन को ही देखना चाहते हैं, और सबसे पहले हम अगली चीज पर जा रहे हैं, पृष्ठ 286। आइए स्तोत्र का अनुवाद करें। यहां हम उस सुपरस्क्रिप्ट का महत्व देखते हैं जो डेविड का भजन है, और वह पूरी बात जो डेविड किसी से कह रहा है कि वह उसका भगवान है। और दाऊद का प्रभु कौन हो सकता है, अर्थात दाऊद उसका दास है। सब लोग राजा के दास हैं, परंतु यह राजा दाऊद अपने से कहीं महान व्यक्ति का दास है, जो कि मसीहा प्रभु यीशु मसीह है। सो वह कहता है, यहोवा मेरे प्रभु से कहता है, मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी के पास न कर दूं। यहोवा तेरे राजदंड को सियोन से, तेरे पराक्रमी राजदंड को भेजता है। और वह कहता है, संभवतः अपने शत्रुओं के बीच में शासन करो। उद्धरण का अंत। तेरी शक्ति के दिन तेरे लोग अपने आप को स्वतंत्र रूप से अर्पित करेंगे। भोर के गर्भ से पवित्र वस्त्र पहने, तेरी जवानी की ओस तेरी होगी। प्रभु ने शपथ खाई है और वह अपना मन नहीं बदलेंगे। आप सदैव पुजारी हैं। मेरा मानना है कि इसका अनुवाद मलिकिसिदक की तरह किया जाना चाहिए। प्रभु आपके दाहिने हाथ पर है। वह अपने क्रोध के दिन राजाओं को चकनाचूर कर देगा। वह राष्ट्रों का न्याय करेगा और उन्हें लाशों से भर देगा। वह सारी पृथ्वी पर सिर को व सारी पृथ्वी पर सिरों व प्रधानों को चकनाचूर कर देगा। वह मार्ग के नाले में से पिएगा, इसलिए सिर ऊंचा करेगा। लेकिन इसके स्वरूप के परिचय के तरीके से जाहिर है कि हम कविता से निपट रहे हैं, और कविता कल्पना से भरी है। इसलिए परमेश्वर की सेना की तुलना सुबह की ओस से की गई है। राजा की जीत की तुलना उसकी तुलना से की जाती है, और उसके धैर्य की तुलना रास्ते में एक वादी से पेय लेने से की जाती है। तो यह उस तरह की कल्पना से भरा हुआ है, यह समानता से भरा है, और रूप में यह एक भजन है। इसे तार वाले वाद्य यंत्रों की संगत में गाया जाता है, और वास्तव में यह एक भविष्यवाणी है, और अक्सर संगीत का उपयोग भविष्यवाणी कथन की प्रेरणा के लिए किया जाता था। और संदर्भ से ऐसा प्रतीत होता है कि सेटिंग राज्याभिषेक की पूजा अर्चना की प्रतीत होती है। जब परमेश्वर अपने राजा से कहता है, मेरे दाहिने हाथ बैठ, और अगर हम ऐतिहासिक राजा पर बाई नजर डालें, तो वह तब होता है जब वह भगवान के दाहिने हाथ पर बैठा था। मैं इसके बारे में और बात करूंगा कि वह उस स्तर पर अपने दाहिने हाथ पर क्यों बैठे थे। और फिर वह ईसा मसीह के स्वर्गारोहण की तस्वीर है, और वह पृथ्वी का न्याय करने के अधिकार में है, और वह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर है। यह एक राज्याभिषेक पूजा है जिसे असीरियन राज्याभिषेक कविताओं से भी समर्थन मिलता है। यहां मैं जॉन हिल्बर्स के डॉक्टरेट शोध प्रबंध पर निर्भर हूं, जो पहले डलास में पढ़ाते थे। उन्होंने कैम्ब्रिज में डॉक्टरेट का शोध प्रबंध किया था और भजन में एक सांस्कृतिक भविष्यवाणी कही थी। वह भजन 110 की तुलना असीरियन राजा के राज्याभिषेक के लिए इन भविष्यवाणी कविताओं से करता है, और वह मुख्य रूप से लगभग 675 ईसा पूर्व एसरहद्दोन के समय के ग्रंथों से निपट रहा है। यहां उनके बीच कुछ समानताएं दी गई हैं। दोनों एक परिचयात्मक सूत्र के साथ शुरू होते हैं, जैसे कि हमारे पास श्लोक एक में है, भगवान मेरे भगवान से कहते हैं, और इसी तरह ये असीरियन राज्याभिषेक अनुष्ठान शुरू होते हैं। दूसरे, इन्हें उपदैवद्य द्वारा दो भागों में विभाजित किया गया है। इसी प्रकार इस स्तोत्र में भी आप प्रभु को दो बार बोलते हुए देखते हैं। पहले श्लोक में प्रभु मेरे प्रभु से कहते हैं, मेरे दाहिने हाथ पर तब तक बैठे रहिए जब तक मैं आपके शत्रुओं को आपके चरणों की चौकी के पास न कर दूं। और फिर स्तोत्र के दूसरे भाग में श्लोक 4 में प्रभु ने शपथ खाई है और वह अपना मन नहीं बदलेंगे। और फिर भगवान इस बार कहते हैं, न केवल राजा भगवान के दाहिने हाथ पर बैठा है और वह सभी शत्रुओं को अपने चरणों की चौकी बना देगा, बल्कि आप मलिकिसिदक की तरह हमेशा के लिए पुजारी हैं। तो जैसा कि असीरियन शाही भविष्यवक्ताओं के राज्याभिषेक अनुष्ठान में हमारे पास दो भागों में एक उपविभाजन है, स्तोत्र में हमारी एक कठिनाई वक्ताओं का बदलना है। असीरियन राज्याभिषेक पूजा पद्धति में हिलबर्स के अनुसार यही होता है, वक्ताओं में बदलाव है। इसलिए उदाहरण के लिए इस स्तोत्र में प्रभु श्लोक 1 में बोलते हैं, मेरे दाहिने हाथ बैठो, लेकिन फिर श्लोक 2 में डेविड बोलता है, भविष्यवक्ता बोलता है, यहोवा सियोन से तेरे पराक्रमी राजदंड को भेजता है। तो परमेश्वर पद 1 में बोल रहा है और भविष्यवक्ता या दाऊद पद 2 और 3 में बोल रहा है। श्लोक 4 में भगवान फिर से बोल रहे हैं, और उसने उससे कहा, तू मेलकीसेदेक के समान सर्वदा याजक है, उद्धरण का अंत जिसमें भविष्यवक्ता राजा को संबोधित करता है और वह कहता है, प्रभु तेरे दाहिने हाथ पर है। तो यह भगवान ही है जो श्लोक 4 में राजा से बात करता है, और फिर यह भविष्यवक्ता ही है जो राजा से 5 से 7 आयतों में बात करता है। तो आपके पास श्लोक 1 है, भगवान राजा से बात करता है, और 2 या 3 भविष्यवक्ता राजा से बात करता है। श्लोक 4 में ईश्वर राजा से बात करता है, 5 से 7 तक भविष्यवक्ता राजा से बात करता है। और आपके पास न केवल वक्ताओं का परिवर्तन है, बल्कि आपके पास पते का परिवर्तन भी है। इसलिए उदाहरण के लिए जब वह भविष्यवक्ता में पद 5 से 7 तक उत्तर देता है कि आप मेलकीसेदेक की तरह याजक हैं, तो हमारे पास भविष्यवक्ता राजा को संबोधित करता है जैसा उसने पद 2 और 3 में किया था, प्रभु आपके दाहिने हाथ पर है। वह अपने क्रोध के दिन राजाओं को चकनाचूर कर देगा, लेकिन अब वह राजा के बारे में बात करता है और वह मंडली से बात कर रहा है। वह राष्ट्रों के बीच न्याय निष्पादित करेगा, और वह राजा से बात नहीं कर रहा है, बल्कि वह राजा के बारे में बात कर रहा है। और इसलिए आपके पास राजा को संबोधित करने से लेकर मंडली को संबोधित करने तक इस प्रकार का बदलाव है। हिलबर्स के अनुसार आपके पास असीरियन राज्याभिषेक पूजा पाठ में बिल्कुल वही चीज है जहां आपके पास वक्ताओं का परिवर्तन है। यदि आप इसे मंदिर अनुष्ठान में कर रहे हैं तो यह एंटीफोनल होगा और अलग अलग वक्ता होते। मैंने भजन 2 में यह बात नहीं कही, लेकिन भजन 2 में शायद अलग अलग वक्ता थे, कोई राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। जब उन्होंने कहा, इसका जुआ हम पर से उतार फेंको, तो कोई ईश्वर की ओर से बोल रहा है, शायद पादरी, मैंने अपने राजा को रोक दिया है। फिर राजा 7 से 9 श्लोकों में बोल रहा है और फिर भजनकार स्वयं बोल रहा है, तो शायद यह एंटीफोनल है। और आप राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी व्यक्ति, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाले पुजारी, स्वयं का प्रतिनिधित्व करने वाले राजा और फिर राष्ट्रों को संबोधित करने वाले भजनहार की आवाजों के परिवर्तन से वक्ताओं के परिवर्तन को समझ गए होंगे, तो मैं समझूंगा कि यह कोई ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। शायद पुजारी ने कहा होगा कि मेरे दाहिने हाथ पर बैठो और तुम मलिकिसिदक की तरह एक पुजारी बनोगे, और फिर आपके पास स्वयं भविष्यवक्ता था जिसने मंडली से बात की होगी। ब्रूस, क्या आप प्रतिक्रियाशील पढ़ने के पीछे के इतिहास से अवगत हैं और क्या यह एंटीफोनल भजनों का आधुनिक प्रतिबिंब है? ओह, और आधुनिक वास्तविक है। जब हम आगे पीछे जाते हैं तो आधुनिक प्रतिक्रियाशील पठन, इसके बारे में क्या है? क्या यह एंटीफोनल भजनों की नकल करने के लिए किया गया था, या क्या आप इसके बारे में जानते हैं? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मेरा मतलब है, यह मेरे लिए सबसे प्रशंसनीय लगता है क्योंकि इन सर्वनामों का कोई पूर्ववृत्त नहीं है, इसलिए परिवर्तनों को इंगित करने के लिए आवाजों में बदलाव हुआ होगा। अन्यथा आप और वह इत्यादि का पूर्ववृत्त यह दिया ही नहीं गया है। यह एक तरह से मान लिया गया है। और मुझे लगता है कि अगर आवाजें नहीं बदली तो सुनना मुश्किल होगा। इसलिए मुझे लगता है कि अधिकांश अन्य लोगों के साथ मैं भी यह अनुमान लगा रहा हूं कि यह एंटीफोनल है और यह संकेत देगा कि यह एक धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा था। यदि यह एंटीफोनल है तो इसमें मंडली की भागीदारी मानी जाती है। फिर असीरियन एनास में इसे देवता और राजा शहर के बीच एहसास को वैध बनाने के लिए संख्या डीआई में रखा गया है, न कि भगवान के दाहिने हाथ के लिए। और फिर दुश्मन उसके चरणों में होंगे। यह असीरियन सामग्री में भी है, दुश्मनों के विनाश का वादा, जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, असीरियन सामग्री में भी है। सार्वभौमिक प्रभुत्व का वादा असीरियन भविष्यवाणियों के समानांतर है। निष्ठावान समर्थन की उपस्थिति, आपके लोग आपकी शक्ति के दिन तैयार रहेंगे, भजन 110.3। झूठ बोलने से इनकार के साथ ईश्वरीय प्रतिज्ञा, प्रभु ने शपथ ली है कि पश्चाताप नहीं करेंगे। पुरोहिती जिम्मेदारी की पुष्टि और शाही विशेषाधिकारों की शाश्वतता की आप हमेशा के लिए एक पुजारी हैं। यह सब असीरियन राज्याभिषेक पूजा पद्धति और भविष्यवाणियों में सारिश्य पाता है। क्या हम उसे बंद कर सकते हैं? यहां उसका अंकन है और यह ठीक है। ठीक है। मुझे क्षमा करें, मैं आप पर निशाना साध रहा था। ठीक है। ठीक है। अब हमने स्तोत्र के स्वरूप की पृष्ठभूमि दिखाने का प्रयास किया। हमने नए नियम में भजन के महत्व के बारे में बात की है। फिर हमने स्तोत्र का अनुवाद किया। हमने उस रूप के बारे में बात की जो राज्याभिषेक पूजा पद्धति है, जो असीरियन राजा के राज्याभिषेक के समय राज्याभिषेक की भविष्यवाणी के समान है, जो स्पष्ट रूप से पूर्व निर्वासन है। अब मैं भजन की अलंकारिकता और इसकी संरचना के तरीके या इसकी तार्किक रूपरेखा के बारे में बात करना चाहता हूं। ईश्वर के बोलने और फिर भविष्यवक्ता के उस भाषण पर विचार करने के बीच यह विभाजन दो भागों में होता है। आपके पास दिव्य उद्धरण का परिचय है, भगवान ने कहा है, और फिर आपके पास दिव्य उद्धरण है, मेरे दाहिने हाथ पर बैठो। तब आपके पास उस पर भविष्यवाणी का प्रतिबिंब होगा और वह अपने दुश्मनों के बीच शासन करेगा और उसके लोग उसकी शक्ति के दिन तैयार होंगे। फिर आपके पास अगले उद्धरण का परिचय है, प्रभु ने शपथ खाई है, वह अपना मन नहीं बदलेंगे। फिर आपके पास यह कथन है, आप इलियट मिल्की से देख के बाद हमेशा के लिए एक पुजारी हैं। और फिर आपके पास राजा की विजय और जीते होंगी। तो वे हैं, इसे ही हम प्रत्यावर्ती समानता कहते हैं। फिर दोनों हिस्सों में हमारे पास दिव्य उद्धरण, डेविड के भगवान के लिए एक भविष्यवाणी का परिचय है। प्रभु मेरे प्रभु से कहते हैं, तो तुम्हारे पास प्रभु मसीहा का दिव्य उद्धरण है, तब तक सिंहासन पर बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे चरणों की चौकी न बना दूं। फिर हमारे पास उस दिव्य उद्धरण पर भविष्य सूचक प्रतिबिंब है, जो भगवान या मसीहा को संबोधित है कि भगवान पवित्र युद्ध की शुरुआत करते हैं। यहोवा तेरे पराक्रमी राजदंड को सियोन से बढ़ाएगा। तब राजा कहता है, अपने शत्रुओं के बीच में शासन करो, और प्रभु का मसीहा या उसकी सेना उस दिन लड़ने को तैयार होगी जिस दिन वह अपनी शक्ति प्रकट करेगा। इसलिए वे कहते हैं, आपके सैनिक आपके युद्ध के दिन पवित्र वैभव से सुसज्जित होकर स्वयं को स्वतंत्र रूप से अर्पित करेंगे। तेरे जवान भोर के गर्भ से उसकी नाई तेरे पास आएंगे। दूसरा छंद फिर से उद्धरण का परिचय, एक अपरिवर्तनीय शपथ, भगवान ने शपथ ली है, उनका मन नहीं बदलेगा, दिव्य उद्धरण, आप मलिकिसिदक की तरह हमेशा के लिए एक पुजारी हैं। और फिर उस उद्धरण पर विचार, यानी पहले वह भगवान को संबोधित करता है कि भगवान आपके दाहिने हाथ पर है। शायद पहले से ही यहां वह मंडली को संबोधित कर रहा है। फिर वह राजा के विषय में कहता है, वह अपने क्रोध के दिन राजाओं को चकनाचूर कर देगा। तो यहां क्या हो रहा है? राजा को प्रोत्साहित करने और राजा को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए सीधे राजा को संबोधित करने के बजाय वह राजा के बारे में बात करता है। और निस्संदेह राजा यह सुन रहा है। और इसके श्रवण के माध्यम से यदि आप अन्य लोगों को अपने बारे में बोलते हुए सुनते हैं तो यह स्वयं सशक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। इसलिए जब वह मंडली को संबोधित कर रहा है, राजा इसे सुन रहा है और स्वीकारोक्ति से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर रहा है। तो वे नहीं हैं, मेरे विचार से वे काफी अच्छी तरह से एक साथ रहते हैं। तो मसीहा पूरी पृथ्वी का न्याय करता है। वह राष्ट्रों का न्याय करेगा और उन्हें लाशों से भर देगा। वह सारी पृथ्वी भर के सरदारों को चकनाचूर कर देगा और फिर वह अपनी जीत पूरी करेगा। वह रास्ते में नाले से पानी पिएगा, इसलिए अपना सिर उठाएगा। हम अगले व्याख्यान में अलंकार के बारे में बात करेंगे, लेकिन अलंकार में संरचनाओं में से एक वैकल्पिक संरचना है। तो आप देख सकते हैं कि यह एक एबीसी परिचय, उद्धरण, प्रतिबिंब, ए प्रधान परिचय, बी प्रधान उद्धरण, सी प्रधान प्रतिबिंब है। और आप देख सकते हैं कि वे एक दूसरे के समानांतर कैसे हैं। और मुझे लगता है कि इससे वास्तव में इस भजन को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। यह भी दिलचस्प है कि दोनों हिस्से बराबर भागों में बंटते हैं। हिब्रू पाठ में श्लोक 1-3 तक 74 शब्द हैं और श्लोक 4-7 तक 74 शब्द हैं। और भजन में उस तरह की समरूपता आना कोई असामान्य बात नहीं है, जैसे भजन 2 में 3 छंद 3 छंद 3 छंद थे। और उस प्रकार की सभी संरचना और समरूपता हमें यह दिखाने के लिए है कि ईश्वर व्यवस्था का ईश्वर है और वह शासन कर रहा है और नियंत्रित कर रहा है। भाग 2 को देखें, फिर प्रदर्शनी और सुप्रस्क्रिप्ट जो डेविड द्वारा है। और मेरा तर्क है कि यह यीशु के इस तर्क के लिए महत्वपूर्ण है कि मसीहा ही प्रभु है, क्योंकि यह राजा ही है जो उसे अपना प्रभु कह रहा है। और इसलिए वह दाऊद के पुत्र से भी महान है। वह दाऊद यहाँ एक भविष्यवक्ता है जो भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है। वह राजा से बात कर रहा है, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो पूरी पृथ्वी पर फिर से शासन करेगा। तो वह एक भविष्यवक्ता है जो यह अनुमान लगा रहा है कि मसीह में क्या पूरा होगा और क्या पूर्ण होगा। यह आज उनके पुनरुत्थान और उनके आरोहण में पूरा हो रहा है, और यह दूसरे आगमन पर पूरा होगा जब वह वास्तव में दुनिया का न्याय करेगा। जो लोग डेविडिक लेखकत्व से इनकार करते हैं वे तारीख के बारे में आम सहमति नहीं बना पाते हैं। लेकिन ठीक है, यह एक भजन है जो हमने कहा है, और अधिकांश भविष्यवाणी की तरह यह संगीत के साथ है। तो उद्धरण का परिचय, हमारे पास फिर से भगवान का नाम है, यह यहोवा है शाश्वत। तो वह वही है जो शाश्वत है, जो अपरिवर्तनीय है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा जैसा कि शुरुआत में थी, अब भी है और हमेशा रहेगी, हम स्वीकार करते हैं। और मैं जो हूं वह अप्राप्य गुण है, यानी उनके जैसा कोई नहीं है। मैं हूं जो भी मैं हूं, और कोई भी ऐसा नहीं है जो शाश्वत हो। ऐसा कोई भी नहीं है जो आस्तिकता हो, जो व्युत्पन्न न हो। वह पूरी तरह से स्वयं से विद्यमान है। वह भगवान है और न केवल उसकी सर्वशक्तिमानता और उसकी सर्वव्यापकता और उसकी सर्वज्ञता, बल्कि उसके जैसा कोई नहीं है जो आपके जैसा क्षमा करने वाला ईश्वर है, जो अनुग्रह और दया के साथ साथ उसके न्याय से भरा हुआ है। और जब यह कहता है, प्रभु कहते हैं, बोलने के लिए इब्रानी में भिन्न भिन्न शब्द हैं। यदि यह बोलने का कार्य है तो वे वास्तव में बोलने के लिए डिब्बर शब्द का उपयोग करेंगे। यदि वे जो बोल रहे हैं उसकी सामग्री का संदर्भ दे रहे हैं तो वे अमा शब्द का उपयोग करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने क्या कहा, डिब्बर बोलने का कार्य जो बोला गया है उसकी सामग्री, फिर आप अमा शब्द का उपयोग करते हैं। ये शब्द अलग है। इस शब्द का अर्थ है भविष्य सूचक भाषण। इसका प्रयोग सामान्यतः भगवान के लिए किया जाता है। और निःसंदेह ईश्वर क्या कहता है यह जानने का एकमात्र तरीका पैगंबर के माध्यम से ही है। तो नॉम वास्तव में भविष्यवाणी भाषण को संदर्भित करता है। यह कोई है जो आत्मा में बोल रहा है। इस प्रकार यीशु ने यह वचन समझ लिया होगा, क्योंकि वह उनसे कहता है जो उसे फंसाने का प्रयत्न कर रहे थे, फिर दाऊद ने आत्मा में होकर ऐसा कैसे कहा? और वह जानता है कि वह आत्मा में इस शब्द नाउम के कारण ऐसा बोल रहा है। यह सामान्य शब्द नहीं है, यह एक भविष्यवाणी शब्द है। मैं आपको कुछ अन्य आयतें देता हूं जहां इस शब्द का प्रयोग पैगंबरों के साथ किया गया है। इसका उपयोग बिलाम के लिए किया जाता है जब उसे अपनी दैवज्ञता प्राप्त होती है, और इसका उपयोग भजन 18 और 2 सैमुअल में डेविड के लिए किया जाता है। मुझे लगता है कि 2 सैमुअल 23 के बजाय 2 सैमुअल 22 होना चाहिए। और इब्रानियों के लेखक का कहना है कि दाऊद एक भविष्यद्वक्ता था, परंतु वह एक भविष्यद्वक्ता था और जानता था कि परमेश्वर ने उससे शपथ खाई थी कि वह अपने वंशजों में से एक को सिंहासन पर बिठाएगा। अगले वचन की ओर मुड़कर उसने मेरे प्रभु से कहा, अर्थात दाऊद उसका दास है, वह मालिक है, वह सभी का भगवान है। इसके बाद हम प्रशस्ति पत्र पर आते हैं और उद्धरण उसे शासन करने का अधिकार देता है। उसे शासन करने का अधिकार और शक्ति दी गई है, और इसलिए वह कहता है, मेरे दाहिने हाथ पर बैठो। बैठना अधिकार की मुद्रा है। जब मूसा ने सिखाया तो वह बैठ गया, जब मसीह ने शिक्षा दी तो वह पहाड़ी उपदेश पर बैठे। पोप एक्स कैथेड्रा बोलते हैं, वह कुर्सी से बोलते हैं। हम बिशप सी के बारे में बात करते हैं जो सीट के संक्षिप्त रूप में आता है, लेकिन प्राधिकारी की स्थिति नीचे बैठ रही है, और इसलिए वह अपने भगवान से कहता है, मेरे दाहिने हाथ पर बैठो। मैं कुछ हद तक इसमें शामिल हो गया क्योंकि जब मुझे वेस्टमोंट थियोलॉजिकल सेमिनरी में ओल्ड टेस्टामेंट की कुर्सी दी गई थी तो मुझसे ट्रेम्पे लॉन्गमैन का परिचय देने के लिए कहा गया था। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि कुर्सी का यह विचार कहां से आया। खैर, मुझे पता चला कि 15वीं शताब्दी में कुर्सी का पहला संदर्भ ओल्ड टेस्टामेंट के रेगियस प्रोफेसर से मिलता है। अब कुर्सी का दूसरा संदर्भ ऑक्सफोर्ड में ओल्ड टेस्टामेंट के रॉयल प्रोफेसर रेगियस प्रोफेसर के लिए है। उन्हें वस्तुतः एक कुर्सी दी गई थी जिस पर वे बैठेंगे, इसलिए उस कक्षा में उसका अधिकार था क्योंकि वह एक कुर्सी पर बैठता था। मुझे यह भी पता चला कि रईस के घर में वास्तव में केवल एक ही कुर्सी थी और वह रईस के लिए थी, बाकी सभी लोग उसके चारों ओर स्टूल पर बैठ गए। तो उन्होंने वास्तव में उसे एक कुर्सी दी जिस पर वह बैठेगा, जो उसके अधिकार का प्रतीक है। इसी की बात हो रही है। यह कहता है, बैठो, जो अधिकार और शासन का पद है। फिर वह अपने दाहिने हाथ से कहता है, और मुझे लगता है कि चूंकि यह एक है, मंदिर स्वर्ग की एक प्रति है, आपके पास यहाँ मंदिर परिसर में क्या है? दीवार के चारों ओर मंदिर परिसर, पूरी चीज के चारों ओर एक दीवार थी। आपके पास पूर्व की ओर मंदिर था और दक्षिण की ओर, दाहिने ओर न्याय का बरामदा था। राजा न्याय के बरामदे में अपने सिंहासन पर बैठा और निर्णय सुनाया। तो मंदिर में आपके पास 10 आज्ञाएं और संदूक हैं जो भगवान के शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर उसके दाहिने हाथ पर आपके पास वह राजा है जिसने अनुबंध को लागू किया, जिसने नियमों को लागू किया। इस तरह मैं दाहिने हाथ को समझता हूँ। यह हमें स्वर्ग को समझने में मदद करता है कि ईश्वर ही वह है जो कानून देता है। यीशु ही वह है जो कानून और न्याय को गति देता है, उसका समर्थन करता है और उसका संचालन करता है। तो वही है जो पृथ्वी का न्याय करेगा। इस प्रकार मैं अपने दाहिनी ओर बैठकर सबसे अच्छी तरह समझता हूँ कि वह सबका न्यायाधीश है और वह ईश्वर के अधीन है। इससे पता चलेगा, मैं कुछ उदाहरण देता हूँ कि यह दाहिनी ओर बैठने का सर्वोच्च अधिकारी क्यों है। उदाहरण के लिए, जब बतशेबा सुलेमान के सामने प्रवेश करती है तो वह कहता है, मेरे दाहिने हाथ बैठो। उसने उसे सर्वोच्च सम्मान दिया, लेकिन फिर भी वह उसकी बात सुनने में अधिक होशियार था। इसलिए यद्यपि उसके पास सर्वोच्च सम्मान था, फिर भी उसने अपनी शाही बुद्धि का प्रयोग किया और दाऊद की उपपत्नी अभिषेक को अपनी पत्नी के रूप में चाहकर सिंहासन प्राप्त करने की अदोनियाह की योजना के पीछे देखा। फिर मैथ्यू अध्याय 20 श्लोक 20 से 24 में जेबेदी के बेटों यानी जेम्स और जॉन की माँ, वह चाहती थी कि एक उसके दाहिने हाथ पर और एक उसके बाएं हाथ पर बैठे। यह सर्वोच्च प्राधिकारी होगा। यीशु ने कहा कि यह पिता को देना है। सबसे पहले आपको वह प्याला पीने के लिए तैयार होना होगा जो मैंने पिया था, जो अन्य लोगों के लिए मरने की इच्छा का प्याला है। यह सब परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठने के अधिकार का स्थान दिखाएगा। दाहिनी ओर न्याय का स्थान और 10 आज्ञाओं का निष्पादन है। मैं पृष्ठ 291 पर मिस्र के राज्याभिषेक अनुष्ठान की एक समानता बताता हूँ। मिस्र के राज्याभिषेक समारोह में इसके दो भाग थे। दो राज्याभिषेक हुए, एक मंदिर में था और दूसरा महल में था। उन्हें उनके महल में ले जाया गया जहाँ वे अपने सिंहासन पर बैठे, जहाँ कमोबेश धमकी भरे तरीके से उन्होंने अपने शासन की शुरुआत उर्बी एट ओर्बी की घोषणा की। इसका यही मतलब है, शहर पर शासन और राज्य पर शासन, शहर और ब्रह्मांड पर उसका सार्वभौमिक शासन। तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण में पूरा हुआ एक प्रकार है, जहाँ आज मनुष्य का पुत्र भगवान के दाहिने हाथ पर बैठता है और उसे एक राज्य दिया जाता है। वह अपनी आत्मा उंडेल रहा है, अपना राज्य स्थापित कर रहा है। आज उनका साम्राज्य सर्वव्यापी है। लगभग हर भाषा में प्रभु यीशु मसीह की पूजा करने वाले लोग मौजूद हैं। मुझे लगता है कि हमें इस बात का एहसास नहीं है कि ईश्वर का राज्य कितना महान है और वह किस शक्ति से काम कर रहा है, वह क्या कर रहा है, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया में। मेरा मतलब है, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की आत्मा जहां चाहे वहां जाएगी, लेकिन यह शुरू हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि यह यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और फिर रोम और फिर यूरोप और इसमें अमेरिका भी शामिल है, लेकिन आज प्रमुख आध्यात्मिक आंदोलन दक्षिण पूर्व एशिया में है। यह पूर्व में है। सभी ईसाई धर्म प्रचारकों में से 60% दक्षिण पूर्व एशिया में हैं। पूरे यूरोप और अंग्रेजी भाषी दुनिया की तुलना में दक्षिण पूर्व एशिया में अधिक ईसाई धर्म प्रचारक हैं। यह वहां बहुत शक्तिशाली है। मेरे लिए दिलचस्प बात यह है कि हमारे कई चीनी छात्रों के दिल में यरूशलेम में सुसमाचार लाने और यहूदियों के पास वापस जाने की इच्छा है। मुझे लगता है कि यह उम्र के अंत की ओर है। इसलिए जब मैं चर्च के इतिहास और जिस तरह से भगवान आगे बढ़ रहे हैं उसे देखता हूँ तो सुसमाचार पूरी पृथ्वी पर फैल गया होगा। जब वह कहते हैं, जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे चरणों की चौकी न बना दूं, अंग्रेजी में जब तुम कहते हो जब तक, इसका मतलब है कि यह रुकने वाला है, लेकिन हिब्रू में इसका मतलब यह नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह एक सतत स्थिति है। पूर्णता समाप्ति बिंदु तक पहुंचने के बाद भी वह अपना शासन हमेशा हमेशा के लिए जारी रखेगा। भगवान कहते हैं, जब तक मैं शत्रुओं को तुम्हारे चरणों की चौकी के समान न कर दूं, ताकि जब भगवान अपने राज्य की स्थापना के लिए राजा का उपयोग करते हैं, अंतः जैसा कि भजन 92 में है, यदि आप केंद्र के चार शब्दों को याद करते हैं तो भगवान शीर्ष पर हैं और इन सबके पीछे भगवान पिता हैं। यह नए नियम के धर्मशास्त्र का उपयोग करना है। और मैं तुम्हारे शत्रु बनाता हूँ, शत्रु वही हैं जो भजन 2 में हैं। ये वे हैं जो परमेश्वर के शासन के विरोधी हैं, वे जो 10 आज्ञाओं के विरोधी हैं। और जैसा कि मैंने टिप्पणी की, हमारा सर्वोच्च न्यायालय दुखद रूप से बहुमत 10 आज्ञाओं का विरोध करता है। आप हमारे देश की धर्मत्याग देख सकते हैं, क्योंकि पूरे सुप्रीम कोर्ट में 10 आज्ञाएं हैं जिनका वे उल्लंघन कर रहे हैं और अब उनका पालन नहीं करते हैं। मेरा मतलब है, यह एक ज्वलंत नाटकीय परिवर्तन है। और सर्वोच्च न्यायालय के कोने के टुकड़े पर, जहां सभी न्यायविद एक केंद्रीय व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं, अधिकांश जो मंदिर पर उस प्रतिमा की व्याख्या करते हैं, वे उसे मूसा और 10 आज्ञाओं के रूप में पहचानते हैं। तो आप हमारे देश की धर्मत्याग देख सकते हैं और हम कहां जा रहे हैं। जब यह आपके चरणों की चौकी कहता है, तो यह चौकी वास्तव में सिंहासन का हिस्सा थी। यह सिंहासन के साथ ठीक हो गया। और मिस्र में चौकी से हम जो देख सकते हैं वह यह है कि चौकी पर फिरौन के शत्रुओं के सिर थे। उसने सचमुच अपने पैर उनके सिर पर रख दिए, जैसा कि वहां चित्रित किया गया था, और वे उसके शासन के अधीन थे। और यहां इस कल्पना का प्रयोग किया जा रहा है कि उसके शत्रु मानो चरणों की चौकी पर चित्रित हैं। और यहां संप्रभु है जो इस सब पर शासन कर रहा है। पॉल पद्य में कहते हैं, इसलिए मैं तुकानामेन की चौकी पर टिप्पणी करता हूँ, जो विदेशी बंदियों का प्रतिनिधित्व करती है, वे अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर साष्टांग झुके हुए हैं और प्रतीकात्मक रूप से उसके शत्रुओं को पहले से ही बंधे हुए और उसके पैरों के नीचे चित्रित करना। विजेता के दृष्टिकोण से यह तिरस्कार और निर्णय को दर्शाता है। पीड़ित के दृष्टिकोण से यह शर्म और अपमान को दर्शाता है। पौलुस मसीह के बारे में कहता है, क्योंकि उसे तब तक शासन करना होगा जब तक वह अपने सभी शत्रुओं को अपने पैरों के नीचे न कर दे। नष्ट होने वाला अंतिम शत्रु मृत्यु है, लेकिन उसने सब कुछ अपने पैरों के नीचे कर दिया है। अब जब यह कहता है कि सब कुछ उसके पैरों के नीचे कर दिया गया है, तो यह स्पष्ट है कि इसमें स्वयं ईश्वर शामिल नहीं है, जिसने सब कुछ मसीह के अधीन कर दिया है। तो अंतिम शत्रु जिसे वह जीतेगा वह मृत्यु ही है। जबकि कब्र हर किसी को निगल जाती है, मसीह की जीत मौत को निगल जाती है। और यह स्वयं मृत्यु से भी बड़ा है। इफिसियों में पॉल कहते हैं, और भगवान ने सभी चीजें उसके पैरों के नीचे रख दी और उसे चर्च के लिए हर चीज का मुखिया नियुक्त किया, जो कि उसका शरीर है, उसकी पूर्णता जो हर चीज को हर तरह से भरती है। तो हमने परिचय को देखा, प्रभु कहते हैं, हमने स्वयं मेरे दाहिने हाथ पर बैठने के उद्धरण को देखा, जब तक कि मैं आपके शत्रुओं को आपके चरणों की चौकी नहीं बना देता। और हमने भजन के प्रत्येक शब्द पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए टिप्पणी की है। अब हम उद्धरण पर आते हैं, मेरा मतलब है उद्धरणों पर चिंतन पर। भविष्यवक्ता अब बोल रहा है और वह कहता है, हम पृष्ठ पर अनुवाद पर वापस जाएंगे, आपके पास वह मेरे सामने होना चाहिए, पृष्ठ 286 पर। और अब भविष्यवक्ता बोलता है, प्रभु सियोन से आपके शक्तिशाली राजदंड को भेजता है और वह प्रभु को उद्धृत करता है, अपने शत्रुओं के बीच में शासन करो। राजदंड गदा है जो बिल्ला और अधिकार का प्रतीक था और यह शक्तिशाली है। भजन 2 में कहीं और इसे लोहे का राजदंड कहा गया है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और वह कहता है, आगे भेजो, और चित्र यह है कि उसे संपूर्ण पृथ्वी को घेरने के लिए अपने प्रभाव को निरंतर विस्तृत करते हुए बढ़ाना है, जैसा कि हम उसे जानते हैं। और सियोन की संकल्पना की गई है, और यहेजकेल 38 में ऐसा कहा गया है, इसकी संकल्पना पृथ्वी के केंद्र के रूप में की गई है, जहां से यह राज्य पृथ्वी के छोर तक फैलता है, और उसे शासन करने के लिए कहा गया है, अर्थात उसे इस पवित्र युद्ध की शुरुआत करनी है और लोगों को स्वतंत्रता के सुसमाचार के अधीन लाना है, स्वतंत्रता का कानून जो लोगों को पाप और मृत्यु से मुक्त करता है और उन्हें मोक्ष दिलाता है। आज मैं कहता हूं कि वह पीड़ित चर्च के माध्यम से शासन करता है, अपने कष्टों को पूरा करता है। चर्च प्रार्थना पर निर्भर करता है, प्रभु की प्रार्थना, उदाहरण के लिए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। और उस प्रार्थना के माध्यम से, जैसा कि हम कई परंपराओं में प्रार्थना करते हैं, एलेन और मैं दिन में 3 या 4 बार प्रार्थना करते हैं, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो। और यह प्रार्थना का उत्तर है कि ईश्वर गवाही के साथ साथ अपना राज्य भी स्थापित कर रहा है। श्लोक 3 में वह कहते हैं, आपके लोग स्वयं को स्वतंत्र रूप से अर्पित करेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ भी लोग हैं, अन्य जगहों की तरह लोग सैनिकों को भजन 44 के रूप में संदर्भित कर सकते हैं। याद रखें कि यह वह सेना है जिसे उन्होंने लोग कहा है, लेकिन यह वह सेना थी जिसने मंदिर की मरम्मत की थी जो हारकर नष्ट हो गई। और मुझे लगता है कि यहाँ मुख्य रूप से उन युवाओं, युवा योद्धाओं की बात हो रही है जो युद्ध में उतरते हैं। और स्वतंत्र शब्द एक स्वतंत्र इच्छा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जैसे कि एक स्वतंत्र इच्छा भेंट, अर्थात यह सेना पूर्णतः स्वयंसेवक है। वे आध्यात्मिक रूप से प्रेरित हो गए हैं। मैं कहता हूं, यह शब्द अक्सर स्वतंत्र इच्छा से दी जाने वाली पेशकशों के लिए उपयोग किया जाता है, उनकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्हें युद्ध के मैदान में अपने राजा का समर्थन करने के लिए समर्पित निडर योद्धाओं के रूप में दर्शाया जाता है। वे अपने राजा से प्यार करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं और जानते हैं कि उनका मामला उचित है। और आज यह उनके शिष्यों के पास पाया गया है। आज हम सचमुच तलवार से नहीं लड़ते, हम परमेश्वर के वचन की तलवार से लड़ते हैं। हमारा उद्देश्य दैहिक राज्य स्थापित करना नहीं है, हमारा लक्ष्य एक आध्यात्मिक राज्य, ईश्वर और घोड़े का शासन स्थापित करना है, और वह बदले में दुनिया को राजनीतिक रूप से प्रभावित करेगा। यह व्यवस्था विवरण अध्याय 20 के पवित्र युद्ध नियमों के लिए सत्य है। पवित्र युद्ध के नियम दिए गए हैं कि केवल स्वयंसेवक ही लड़ सकते थे, कोई ड्राफ्टिंग नहीं थी। तब हाकिम कहेंगे, जब वे उन लोगों को छांटते हैं जो युद्ध में जाने के योग्य नहीं हैं, तो क्या कोई डरता है या उसका हृदय कमजोर है? उसे घर जाने दो तो उनके साथी सैनिक निराश नहीं होंगे। यह पवित्र युद्ध के नियम का हिस्सा है। पवित्र युद्ध में भाग लेने के लिए आपको पूरी तरह से इस उद्देश्य के प्रति समर्पित होना चाहिए और आप एक स्वतंत्र पेशकश हैं। इस प्रकार मैं यहाँ 1 कुरिन्थियों 15:29 को लाता हूँ, जहाँ पॉल कहता है, और हम उन लोगों के बारे में क्या कहें जो मृतकों के लिए बपतिस्मा लेते हैं। मॉर्मन संप्रदाय द्वारा इसे गलत समझा गया है कि हमें बपतिस्मा दिया जा सकता है, कोई व्यक्ति जिसने बपतिस्मा नहीं लिया है, हम उसके स्थान पर बपतिस्मा ले सकते हैं। तो हम सरोगेट बपतिस्मा ले सकते हैं। इसलिए उनके पास मृतकों के लिए बपतिस्मा है। अत तुम मृत व्यक्ति का स्थान ले लो। निश्चित रूप से पॉल के मन में यह बात नहीं है। वह मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहा है। यदि कोई पुनरुत्थान नहीं है तो वह कह रहा है, यदि मृतकों में से कोई पुनरुत्थान नहीं होता तो कोई शहीदों की जगह क्यों लेगा और शहादत का बपतिस्मा क्यों स्वीकार करेगा। तो इसलिए प्रेरितिक समुदाय के ये शहीद मौत के मुंह में चले गए। प्रारंभिक चर्च मृत्यु में चला गया। वे शहीद हो गए। यदि मृतकों में से कोई पुनरुत्थान नहीं हुआ है तो इस सेना में उनकी जगह लेने के लिए कोई भी उनके स्थान पर क्यों आएगा और बपतिस्मा लेगा। पॉल कहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह मैं उस श्लोक को समझता हूँ। मेरा तर्क है कि डलास में मेरे डॉक्टर के शोध प्रबंध में, जहाँ मैंने दो पूर्व सर्गो हूपर एंटे और हूपर पर काम किया था, उन दोनों का अनुवाद किया गया है। उसने कई लोगों के लिए छुड़ौती के लिए अपना जीवन दे दिया और वह हमारे पापों के लिए मर गया। वैसे भी तो मैं उस श्लोक में आ गया। फिलिप्पियों 2 और पॉल अपने बारे में एक बलिदान के रूप में डाले गए पेय प्रसाद के रूप में बात करता है। और फिर मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे एक हालिया लेख से उद्धरण देता हूँ। और मैं टिप्पणी करता हूँ कि युद्ध जीते या हारे नहीं जाते, युद्ध युद्ध के मैदान पर नहीं जीते या हारे जाते हैं, वे पुरुषों के मन में जीते या हारे जाते हैं। कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है। कबना शहर से आईएसआईएस को खदेड़ने के बाद कुर्द कमांडर ने कहा, हम केवल इसलिए बच गए क्योंकि हमें अपने उद्देश्य पर विश्वास था, और इसलिए उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका कारण हमारे मामले की तरह यह भगवान पर है कि हम अपने मुद्दे पर भरोसा करते हैं। यह उचित है और इसकी विजय अवश्य होगी। यह वह विश्वास है जो हमारे पास है कि मसीह विजेता है और धार्मिकता प्रबल होगी। उसकी शक्ति का दिन वह दिन है जब वह उस शक्ति को क्रियान्वित करता है। और मैं इसे उसके स्वर्गारोहण के समय में लेता हूँ, जब उसने अपनी आत्मा उंडेली थी और वे पवित्र वस्त्र पहने हुए थे। और यह है, उन्हें पवित्रता और धार्मिकता में याजकों के रूप में चित्रित किया गया है। तो यहाँ आपके पास उस दिन यह शक्तिशाली सेना है जब मसीह ने अपना शासन बढ़ाया, जो पिंतेकुस्त में शुरू हुआ। उसने अपनी आत्मा उंडेली और उसकी सेना सफेद कपड़े, धार्मिकता और पवित्रता में थी। और कहा जाता है कि वे भोर के गर्भ से थे, एक अद्भुत रूपक। मेरा सुझाव है कि नया युग इस समर्पित सेना को जन्म दे, ताकि पुराने युग के अंधेरे के बाद एक नया युग आए और यह सुबह की ओस की तरह हो। और वास्तव में चर्च की प्रत्येक पीढ़ी का मामला मेरे लिए सुबह की ओस की तरह है। जब मैं पढ़ाता था तो मुझे ऐसा ही महसूस होता था। हर सितंबर में स्कूल के पहले सप्ताह में एक नई कक्षा आती थी और वे उसी भावना के साथ आते थे। विद्यार्थी उसी भावना और उसी विश्वास के साथ आए। और मेरे लिए वे सुबह की ओस की तरह थे, कुछ रहस्यमयी। वे कहाँ से आए थे? परंतु परमेश्वर ने उन्हें प्रति वर्ष ऊपर उठाया। जैसा उसने कहा था वैसा ही वह अपना चर्च बनाएगा। इसलिए जब मैं रात के बाद ओस के बारे में सोचता हूँ तो मैं इसके स्वर्गीय मूल के बारे में सोचता हूँ, जिसका उपयोग मीका में किया गया है, जहाँ यह बात की गई है कि ओस मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं करती है बल्कि यह भगवान की प्रतीक्षा करती है। यह भगवान है जो ओस भेजता है। यह ईश्वर ही है जो अपनी सेना खड़ी करता है और हम उस पर निर्भर हैं। जब मैं ओस के बारे में सोचता हूँ तो असंख्य के बारे में सोचता हूँ। मैं मकड़ी के जाले पर ओस की कल्पना करता हूँ और मैं कल्पना करता हूँ, आपके पास ओस की एक बूंद भी नहीं होगी। आपके पास हमेशा अधिक होता है और आमतौर पर थोड़ा इंद्रधनुष होता है। मेरे विचार से यह स्वयं भगवान की सुंदरता को दर्शाता है। यह ताजा है। मुझे तिप्तिया घास पर इसकी गंध आती है और यह अपनी स्वर्गीय उत्पत्ति के कारण रहस्यमय है। इसमें कहा गया है, मीका, याकूब के बचे हुए लोग बहुत लोगों के बीच में होंगे, यहोवा की ओर से उसके समान, घास पर की वर्षा के समान, जो न किसी की बाट जोहते और न मनुष्य पर निर्भर रहते हैं। अत ओस मनुष्य पर निर्भर नहीं है, ओस भगवान पर निर्भर करती है और भगवान हमेशा अपना चर्च बनाएंगे। यीशु ने वादा किया था कि मैं अपना चर्च बनाऊंगा। इसलिए पश्चिमी दुनिया जिस तरह से चल रही है उससे हम चाहे कितने भी निराश क्यों न हो, हम जानते हैं कि पृथ्वी को ताजा करने के लिए भगवान के पास हमेशा अपनी ओस होगी। और मैं खुशी से भर गया हूं कि मैं प्रभु की सेना में उस ओस का हिस्सा बन सकता हूं। यह उनकी कृपा ही है जो हमें ऐसा बनाती है। मैंने फ्लैंडर्स फील्ड पर प्रसिद्ध जॉयस किल्मर की कविता को यहां लाना उचित समझा। फ्लैंडर्स फील्ड नीचे पिल्ले, क्रॉस, पंक्ति और पंक्ति के बीच, जो हमारी जगह को चिह्नित करते हैं। और आकाश में लार्क्स अभी भी बहादुरी से उड़ते हुए गा रहे हैं, नीचे बंदूकों के बीच शायद ही सुना जा सके। हम मर चुके हैं। कुछ दिन पहले हम रहते थे, सुबह महसूस करते थे, सूर्यास्त की चमक देखते थे, प्यार करते थे और प्यार किए जाते थे। और अब हम फ्लैंडर्स फील्ड में हैं। और यहां वह भाग है जहां मैं कविता पढ़ रहा हूं। शत्रु से हमारा झगड़ा उठाओ। आपको असफल हाथों से बचाने के लिए हम आपके हाथों को ऊंचा रखने के लिए मशाल फेंकते हैं। यदि तुम हम मरने वालों से विश्वास तोड़ोगे तो हम सो न पाएंगे, चाहे फ्लैंडर्स के मैदान में पिल्ले पलें। और इसलिए वे स्वतंत्रता के लिए मर गए और उन्होंने नई पीढ़ी को मशाल दी ताकि हम स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए तैयार हो सकें और उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं होगी। लेकिन मुझे डर है कि जिस तरह से हमारा देश चल रहा है उससे हम अपनी स्वतंत्रता खोने के खतरे में हैं, जैसा कि मैं आज राजनीतिक परिदृश्य देखता हूँ। श्लोक दो को देखते हुए, श्लोक शाश्वत पुरोहिती से शुरू होता है और राजा की शाश्वत जीत के साथ समाप्त होता है। आप सदैव पुजारी हैं। और वह नदी से पानी पीने जा रहा है और अपनी विजय यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। परिचय एक शपथ से शुरू होता है जो वह खाता है और अपना मन नहीं बदलेगा। भविष्यवाणी, वादे और शपथ में अंतर है। यह अक्सर कहा जाता है कि अगर भगवान कुछ वादा करता है, अगर भगवान कुछ भविष्यवाणी करता है तो वह निश्चित रूप से पूरा होगा। यह वास्तव में आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। आपके पास यिर्मयाह अध्याय 18 में यिर्मयाह के मंदिर उपदेश में भविष्यवाणी का एक नमूना है, जिसमें भगवान ने कहा, यदि मैं अच्छी भविष्यवाणी करता हूँ और लोग बुराई करते हैं तो अच्छा नहीं होगा। यदि मैं बुराई की भविष्यवाणी करता हूँ और लोग अच्छा करते हैं तो बुराई पूरी नहीं होगी। ईश्वर कभी भी अपने नैतिक नियम का उल्लंघन नहीं करता। भविष्यवाणी हमेशा लोगों के व्यवहार पर निर्भर होती है। इसलिए पश्चाताप करने या धर्म त्याग करने का अवसर हमेशा मौजूद रहता है। इसलिए भविष्यवाणी हमेशा भविष्यवाणी के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया और निर्णय की भविष्यवाणी के इरादे पर सशर्त होती है। खैर, यह ऐसा नहीं कहता, बल्कि इसका उद्देश्य पश्चाताप लाना है। इसलिए उदाहरण के लिए, जब मीका ने भविष्यवाणी की कि सिय्योन को एक खेत के रूप में जोता जाएगा और पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा, तो सही प्रतिक्रिया हिजकियाह की थी। उसने पश्चाताप किया और निर्णय टाल दिया। अब मीका ने कभी पछतावे का आह्वान नहीं किया। यह एक धारणा थी, एक अनुमान कि यदि ईश्वर न्याय की भविष्यवाणी करता है तो यह समझा जाता था कि यदि आप पश्चाताप करते हैं तो वह न्याय पूरा नहीं होगा। उनका योना के साथ भी यही कहना है कि योना ने 40 दिन तक प्रचार किया और नीनवे नष्ट हो जाएगा, लेकिन वह जाना नहीं चाहता था क्योंकि वह जानता था कि अगर लोगों ने पश्चाताप किया तो फैसला नहीं आएगा। यह एक पूर्व धारणा थी। यह भविष्यवाणी साहित्य की एक धारणा है जो हमेशा सशर्त होती है, परंतु जब परमेश्वर शपथ खाता है तो वह अटल होती है। इसे रिचर्ड प्रैट द्वारा अच्छी तरह से विकसित किया गया है। मैं वहां उनकी ग्रंथ सूची का हवाला देता हूं। यह उन निबंधों में है जो ज्ञान के तरीके से मेरे सम्मान में बहुत दयालुता पूर्वक लिखे गए थे। तो उनके पास भविष्यवाणी की शर्त और शपथ की बिना शर्त पर एक संपूर्ण निबंध है। तो यह एक शपथ है और वह हमेशा मलिकिसिदक की तरह एक पुजारी रहेगा, नहीं बदलेगा। निस्संदेह पुजारी वह था जो ईश्वर और लोगों और ईश्वर में लोगों के बीच शासन में मध्यस्थता करता था। इस पाठ के बाद प्रभु कहते हैं, आप मलिकिसिदक की तरह हमेशा के लिए एक पुजारी हैं और इस सब में क्या शामिल है? यह एक पौरोहित्य है जो एरोनिक पौरोहित्य का पूर्ववर्ती है। यह शाश्वत पौरोहित्य है और इसलिए यीशु मलिकिसिदक के शाश्वत पौरोहित्य की तरह है, लेकिन मेरे पास उसे विकसित करने का समय नहीं है। वह इब्रानियों की किताब है और मुझे उसे छोड़ना होगा, लेकिन अब हमारे पास पैगंबर का प्रतिबिंब है। प्रभु आपके दाहिने हाथ पर है और भगवान अब श्लोक एक में भगवान की तुलना में एक अलग शब्द है। पद एक में यहोवा मेरे स्वामी यहोवा से कह रहा है, परंतु अब जब यह कहता है कि प्रभु ने श्लोक चार में शपथ खाई है, वह प्रभु है और अब यहोवा तेरे दाहिने हाथ पर है, वह भी बड़े अक्षरों में होना चाहिए। यह अडोनाई शब्द है जो ईश्वर को सभी के प्रभु के रूप में संदर्भित करता है। अंत आय सर्वोत्कृष्टता को दर्शाता है। वह सभी का भगवान है और वह आपके दाहिने हाथ पर है जो सत्ता की स्थिति है। प्रतिशोध के दिन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह राजाओं को तोड़ देगा या चकनाचूर कर देगा। राजा राष्ट्रों के बीच न्याय करेगा। मैं कहता हूं मसीहा पृथ्वी और राष्ट्रों का न्याय करेगा। वह घाटी को लाशों से भर देगा। उसका जोर राष्ट्रों को दंडित करने पर है जो उसके दूसरे आगमन पर पूरा होता है, और फिर यह कहता है कि वह विस्तृत पृथ्वी पर अपना सिर चकनाचूर कर देगा। यह शैतान का संदर्भ हो सकता है, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि यह एक सामूहिक एकवचन है और पृथ्वी के शासकों को संदर्भित करता है। वह रास्ते में नाले से पानी पिएगा, अर्थात वह अपनी जीत पूरी करेगा। ब्रुकवाड़ी के लिए हिब्रू शब्द है और छवि बताती है कि विस्तृत पृथ्वी के रेगिस्तानी इलाकों में भी भगवान मसीहा को उसकी प्यास बुझाने और ताजा करने के लिए प्रचुर मात्रा में पानी प्रदान करेंगे ताकि वह अपना कार्य पूरा कर सके। इसलिए वह एक ऐसी घाटी से पानी पीने जा रहा है जो तेज पानी से भरी हुई है ताकि वह काम पूरा कर सके। वह इसे रास्ते में ही करेगा जैसे वह आगे बढ़ रहा है और वह अपनी विश्वव्यापी विजय में विजयी रूप से आगे बढ़ रहा है। वह रास्ते में शराब पिएगा और तस्वीर यह है कि वह खुद को तरोताजा करने के लिए एक क्षणिक ब्रेक लेता है। इसलिए मैं लिखता हूँ, न तो रेगिस्तान और न ही थकान उसे अत्याचार को समाप्त करने के उत्साह में रोक पाएगी। और मैं लिवी से उद्धृत कर रहा हूँ, रोमन इतिहासकार ने कहा, रोमन नाम का आतंक ऐसा होगा कि एक बार रोमन सेना ने एक शहर की घेराबंदी कर ली तो कुछ भी उसे हिला नहीं पाएगा, न सर्दियों की कठोरता, नहीं महीनों की थकान और वर्षों की, वह जीत के अलावा कोई अंत नहीं जानता और तैयार है। यदि एक तेज और अचानक प्रहार से काम नहीं चलेगा तो यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि जीत हासिल न हो जाए। और वो है इस राजा की तस्वीर। वह पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए अपनी यात्रा में शराब पिएगा। यह तस्वीर है एक जबरदस्त रूपक, मुझे लगता है, राजा के तरोताजा होने और अंत तक उसका पीछा करने का, चाहे उससे जो भी कठोरता की मांग की जाती है। तो और फिर अंत में वह अपना सिर उठा लेता है, जो उसकी जीत का संकेत है। तो यह भजन 110 है, एक और महान राज्याभिषेक पूजा। यह भजन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के हैं। यह सत्र संख्या 22, द लिटर्जिकल अप्रोच, कोरोनेशन स्तोत्र, स्तोत्र 110 है।